ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर श्रीमद्भागवतम स्कंद सात अध्याय एक श्लोक संख्या 33। मातस्य श्रेयो वसच्छेदो दन्तवक्रश्च पांडव पाशत प्रभवरो विष्णु विप्रशापत पद अच्युतो। मातरस्यो वश्चेदो दन्तवक्रस्य पांडव पाशद प्रभवो विष्णु विप्रशापात् पदच्युतो। मातरस्यो वश्चेदो दन्तवक्रस्य पांडव पाशद प्रभवो विष्णु विप्रशापात् पदोच्यतो। मातृशवे मौसी का पुत्र शिशुपाल वा तुम्हारा चेद राजा शिशुपाल दंतवक्र चा तथा पांडव हे पांडव पार्षद प्रभवरो दोनों श्रेष्ठ पार्षद विष्णु विष्णु के विप्र ब्राह्मणों के शापात शाप से पद वैकुंठ लोक में अपने पद से च्यूतो ग्रेव। नारद मुनि ने कहा हे पांडव श्रेष्ठ तुम्हारी मौसी के दोनों पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई शिशुपाल तथा दंत बकर पहले भगवान के पार्षद थे लेकिन ब्राह्मणों के शाप से वे वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गए। शिशुपाल तथा दंत बकर सामान्य असुर ना थे अभी तो वे भगवान विष्णु के पहले के निजी पार्षद थे। वे इस भौतिक जगत में पतित हुए लेकिन वास्तव में वे इस जगत में भगवान की लीलाओं में सहायता करने आए थे। मातर शेदो दंत बकर पांडव पार्षद प्रभो विष्णु विप्रशापात पदोच्युतो। नारद मुनि ने कहा हे पांडव श्रेष्ठ तुम्हारी मौसी के दोनों पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई शिशुपाल तथा दंत बकर पहले भगवान के पार्षद थे लेकिन ब्राह्मणों के शाप से वे वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गए। तो हमारे भक्त लोग सब ये कथा जानते ही हैं आप लोग कि कैसे जो है दंतवक्र और शिशुपाल जो कि पिछले जन्म में आपके हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण थे वो इस भौतिक जगत में कैसे आए ब्राह्मण के श्राप से ये सब हम लोग जानते ही हैं। इस कथा को हम दोहराएंगे नहीं लेकिन यहाँ पर जो है एक जो इस्कॉन में विवादास्पद विषय है वो ये है कि जीव कहाँ से आया। इसका बहुत बड़ा विषय है कि जीव कहाँ से आया। इसमें बहुत से मतांतर हैं। कई लोग जो है ये स्वीकार करते हैं कि जीव जो है वो क्या है भौतिक जगत वो भगवान जो है तट से आया तटस्था जीवे तटस्था शक्ति और कई लोग स्वीकार करते हैं कि जो है वो भवांगी धाम से आया। तो ऐसा श्रील प्रभुपाद जी का जहाँ तक मैंने पढ़ा है काफ़ी जगह जो है श्रील प्रभुपाद जी ने ये लिखा है कि जीव जो है वो वैकुंठ से नहीं गिर सकता क्योंकि इससे अगला ही जो श्लोक है इससे अगले से अगला है 35वां श्लोक उसमें श्रील प्रभुपाद ये क्लियर बता रहे हैं कि जय विजय इस भौतिक जगत में अवतरित हुए तो वे इसलिए आए क्योंकि उन्हें भगवान के लिए कुछ करना था अन्यथा ये तथ्य है कि कोई वैकुंठ से नीचे पतित नहीं होता, इसी के तात्पर्य में अगले। तो ये बहुत लंबा विषय है और बहुत ये जिज्ञासा भरा हुआ है। और कल तक तो मैं यही तैयारी कर रहा था कि मैं इसी पे जो है प्रवचन करूँगा, लेकिन भगवान का ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ, एक नया भक्त आया तो उसने बोला कि क्या पढ़ रहे हो। तो मैंने बताया ये जीव कैसे जो है पतित होता है, कहाँ से आया, ये सारा जो है मैं पढ़ रहा हूँ। बोले क्यों? मैंने बोला कल मेरा लेक्चर है। तो उसने बोल दिया कि प्रभु जी ये बहुत झगड़े का विषय है, इसको मत पढ़ो। तो मैंने सोचा कि जैसे ये परमात्मा की ऐसी कृपा है कि वो नहीं चाहते हैं कि इस विषय को छेड़ा जाए, क्योंकि एक बार हम लोग इस विषय पे जो है बहुत चर्चा कर रहे थे, मैं और एक दूसरे भक्त थे। तो वो कहते थे कि वो बोल रहे थे कि जीव जो है वो भगवान के धाम से आया, तो मैं जो है इस पर डरा हुआ था कि नहीं, भगवान धाम से आ ही नहीं सकता जीव। तो इस पर काफ़ी बहुत विषय गहमागहमी हो गई और बात जो है महाराज तक पहुँच गई थी। महाराज ने बताया फिर कि महाराज ने दोनों को बढ़ाया और बहुत बहुत शांति से समझाया कि देखो, अगर हम मान लें, अगर हम कह दें कि हाँ जीव धाम से आया, तो मधुसूदन खुश हो जाएगा, है ना। और हम बोलते धाम से नहीं है, धाम से आया तो वो खुश हो जाएंगे, और मुझे बोलेंगे अगर धाम से नहीं आया तो खुश हो जाएंगे आप। तो लेकिन इससे दोनों को मिलेगा क्या? आप दोनों को कुछ मिलने का नहीं है इससे। आप जो है अपनी भक्ति करो और जो है इस विषय को ज़्यादा मत छोड़ो, इससे कुछ मिलने का नहीं है वास्तव में। हमारी सिर्फ हमारे मन की संतुष्टि है कि हम जो है वो विजयी हो गए। इसी तरीके से जो है जीबीसी में भी ये स्वीकार किया गया कि जीव जो है धाम से आया, लेकिन कई भक्तों ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसलिए ये विषय जो है बड़ा पेचीदा है, हमेशा से जो है ये जिज्ञासा मुड़ रहा है। तो इसलिए जो है हमें इस विषय को छोड़ ही देना चाहिए, हम दूसरी ही चर्चा करते हैं इस विषय में। क्योंकि जैसे एक बार राधा गोविंद महाराज जी बोल रहे थे कि जीव जो है वो कभी धाम से नहीं आ सकता, क्योंकि एक बार जब जय विजय जब आए थे धाम से, तो वहाँ के जो निवासियों को मालूम पड़ा कि दो पार्षद यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत शोक हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि बैकुंठ में शोक हो गया। महाराज बता रहे कि पहली बार ऐसा हुआ, वहाँ शोक हो गया, सब लोग परेशान हो गए कि अरे ये क्या हो गया, हमारे जो है दो भक्त यहाँ से निकल यहाँ जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ के जो भक्तों में आपस में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम आपस में, इतना प्रेम है जैसे पंजाबी वाक्य आई बात है, इतना प्रेम है, बहुत प्रेम है आपस में। तो वो एक दूसरे के पीछे बिल्कुल जान दे सकते हैं, जान तो जाती नहीं है वहाँ पे हमेशा वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, लेकिन एक कहावत कह दी जाती है। तो बहुत प्रेम है आपस में उन लोगों का। वो जो है एक बार जब वो जा रहे थे तो वहाँ बहुत सब लोग बहुत दुखी हो गए कि यहाँ से जो है वो दो पार्षद जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, और बैकुंठ के पहाड़ तक उसको सब लोग एक एक व्यक्ति एक एक बच्चा जो है सब छोड़ने के लिए पहाड़ तक उनको आए हैं। तब जो है वो बहुत सब रो रहे थे, बिल्कुल बहुत मतलब जो है कि बहुत तेज़ी से रो रहे थे, विलाप कर रहे थे सब लोग। तो बताने को फर्स्ट टाइम एक बार ऐसा हुआ था, क्योंकि जय विजय एक ही बार आए हैं। भगवान नरसिंह का अवतार कई बार हुआ है ना, हर जो है सत्य में नरसिंह का अवतार होता रहता है, लेकिन हर बार जय विजय नहीं आते हैं, उसके लिए दूसरे दूसरे जीव होते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि जय विजय जो है वो भगवान की इच्छा से वो क्या है भगवान धाम को छोड़ दिए उन्होंने, तो सब लोग जो है उनको छोड़ने के लिए आए थे। तो महाराज कह रहे थे कि अगर हमेशा ही ऐसा होता रहे, वहाँ से जीव गिरते रहे, तो ये हमेशा रोते रहेंगे और कोई खामी नहीं रहेगा। तो ये ऐसी घटना घटी। तो जो भी है, ज़्यादा विषय है जो है हम लोग चर्चा ना करते हुए, हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे आए, है ना। हम जैसे भी आ गए यहाँ पे और जहाँ से भी आ गए, बस हमारी जो है स्थिति बहुत गंभीर है। हमें ये पता है कि हम लोग बहुत डेंजर स्थिति में, बहुत डेंजर स्थिति में हम लोग जो है माया से पूर्णतया घिरे हुए हैं। हम लोग जो है वास्तव में पतित हुए हैं। हम लोग किसी लीला करने नहीं आए हैं यहाँ पे, हाँ वो तो लीला करने आए थे, भगवान का जो है वो उसमें लीला में जो है पार्ट बने थे, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। हम लोग जो है वो अपने कर्मों से हीन होकर इस भौतिक जगत में घूम रहे हैं और बहुत समय से घूम रहे हैं, बहुत समय से घूम रहे हैं। तो इसलिए जो है कि हमें अपनी स्थिति समझना चाहिए कि हम जो है इस भौतिक जगत से निकले और बहुत ही अभी बहुत ही सुदृढ़ नाव हमें प्राप्त हुई है, वो है शिल प्रपा जी का आश्रय। तो शिल प्रपा जी का आश्रय प्राप्त हुआ है, इस आश्रय को जो है हम वो ग्रहण करें और इस जो है भौतिक जगत से निकलें। बहुत ही बुरी कंडीशन है हमारी, हम हर बार सोचते हैं कि अब जो है हम संभल गए, अब हम पाप नहीं करेंगे, फिर थोड़े दिन बाद फिर वही पाप में निकल जाते हैं, फिर संभलते हैं कि हाँ अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। कई बार तो फिर संभलना भी नहीं चाहते हैं, ऐसी भी हालत हो जाती है, बार बार पाप करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो जब तक ये शास्त्र ने बताया कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और जब तक आपका शरीर जवान है, जवान भी है और स्वस्थ भी है, जिसमें बीमारी नहीं है, तब तक जो है तब क्या है आप इसको भक्ति कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए। क्योंकि एक नीति शास्त्रज्ञ ने बोला कि जो अच्छा कार्य होता है उसको सबसे पहले करना चाहिए। तो जैसे भी जैसे हम देखते हैं ना कि हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे स्वादिष्ट जो वस्तु आती है उसको हम लोग सबसे पहले ग्रहण करना चाहते हैं कि ये जो है खा लें हम, और ज़्यादा लेना चाहते हैं, बल्कि दूसरे के प्रभाव ही नहीं करते हैं कि दूसरा वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, पर लाओ लाओ हमें, लाओ हमें, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को भी अच्छा लगता है ना, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हैं। तो जो है अच्छी चीज़ है उसी तरीके से तो तुरंत ग्रहण करनी चाहिए, उसको तुरंत लेना चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, भगवान की भक्ति, यही सबसे अच्छी वस्तु है। तो उसको बहुत शीघ्र ग्रहण करनी चाहिए। और जैसे हम लोग जो है बाजार में जाते हैं तो देखते हैं कई फल होते हैं कई प्रकार के, तो हम वही फल खरीदते हैं जो अच्छे फल हों, ताज़े फल हों। तो अच्छा फल और ताज़ा फल इस शरीर का क्या है, जवानी। जवानी जो है वो क्या है, इस शरीर का जो है वो ताज़ा फल है। तो ये ताज़ा फल जो है भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए। जब ये सड़ जाएगा, यानी कि जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब किसी लायक नहीं रहेंगे, तब जो है हम सोचेंगे कि हाँ हम तब करेंगे, भक्ति करेंगे। तो बहुत मुश्किल कार्य है, शरीर में बहुत प्रकार के जो है वो क्या होंगे, रोग हमको घेर लेंगे, बहुत प्रकार के रोग घेर लेंगे। तो इसलिए जो है रोग हमारा वेट कर रहे हैं अभी। अभी आप ये समझिए कि हाँ अभी आप जवान हैं, अभी हमें कुछ ऐसा नहीं होगा आगे चल के, लेकिन होगा। रोग जो है हमारा वेट कर रहे हैं कि कब ये इसको बुढ़ापा पकड़े, कब 40 साल का हो और मैं से पकड़ूँ। और बल्कि अब तो 40 साल से भी जो है नीचे भी हो गया है, रोग पकड़ लेते हैं। जैसे हमारे मंदिर में बहुत से लोग जो हैं बहुत जवानी में बहुत बीमार हैं सर। हाँ, ये क्या नाम है उसका, होटल, होटल होटल में इतना जो है भीड़ है, होटल होटल का प्रचार हमारे एक भक्त ने कर दिया और वो जो है इतना प्रचार हो गया कि विदेशों तक पहुंच गया है। वहाँ पर विदेशों के लोग तो आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी एक प्रपा डिसाइपल हैं अखिलात्मा प्रभु, वो आए हैं, एक सन्यासी थे वो भी गए, अभी भी गए हैं कुछ दिन पहले, दो हफ्ते पहले ही गए हैं, वो 6 महीने रह गए थे और इनका 9 महीने तक बीमारी बताई। तो मेरे को देखा मैंने कि अरे बड़ा अच्छा है ये तो, खा इनका जो है ना क्या दूध कौन सा होता है, मनक्के वाला, मनक्के वाला दूध ये बोलते हैं, मनक्के वाला दूध पियो ये करो सारा बोलते हैं। तो मैंने देखा यार मनक्के वाला दूध बड़ा अच्छा है, मैं सोचा मैं भी दिखा देता हूँ, कम से कम कुछ और नहीं खाऊंगा, मनक्के का दूध तो मिल जाएगा तो वहाँ दिखाया, मैंने दिखाया मेरा भी देखो क्या क्या, मैं महाराज को लेके गया था तो उन्होंने बोला कि आपका लीवर में सूजन है मैंने बोला अच्छा तो मनक्के का दूध मिलेगा, कहते हैं हाँ मनक्के का दूध मिलेगा, ये दवाई खानी पड़ेगी, ये है आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो, भैया मुझे नहीं चाहिए मैं स्वस्थ हूँ। और वास्तव में मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता कि मैं अभी कोई बीमारी ऐसी है। तो इस तरीके से आप कोई भी जाएगा ना, स्वस्थ आदमी जाएगा उसको भी जो है बता दिया जाएगा आपका लीवर खराब है, लीवर तो खराब हो ही होगा आपका, ये गारंटी है। तो इस तरीके से जो है बहुत डेंजर स्थिति है, ਸਿਜਾਦਾ ਰਾਧਿਕਾ ਰਮਨ ਜਗਨਨਾਥ ਬਲਦੇਵ ਸੁਭਦਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਰਾਮ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਦ ਕੀ। ਤੋ ਯੇ ਰੋਗ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਮਾਰਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਾਰ ਹੈ ਵੋ ਅਭੀ ਕਰ ਲੇ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨੀਤੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਵਹਿਨੀ ਗਰੇ ਨਾ ਕੂਪੇ ਖਰਮਮ ਯੁਕਤਮ। ਜਬ ਘਰ ਮੇ ਆਗ ਲਗੇ ਤਬ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪ ਖੱਡਾ ਖੋਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੂਆਂ ਖੋਦੇ, ਕੂਆਂ ਤਬ ਕੂਆਂ ਬਣਾਏ। ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਗੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਹੋਗੀ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵੋ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੋ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੋ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਫਾਇਰ ਕਾ ਵੋ ਰੱਖ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਰੱਖ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈਆ ਕਭੀ ਵੀ ਕੁਛ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਹੋ ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ ਹਮ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਉਸਕੋ ਬਜਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂ ਤੋ ਹਮੇ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇ ਯੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਅਭੀ ਅਭੀ ਜਵਾਨੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਭੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸਮੇਂ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਹੈ ਸਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਲੋਕ ਸਾਲੋਂ ਕੋ ਅਗਰ ਦਿਨ ਮੇ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਲ ਕੋ ਅਗਰ ਹਮ ਦਿਨ ਮੇ ਅਗਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੇ ਇਸਕੋ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਨ ਲੀਜੀਏ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪਾਸ 10 ਸਾਲ ਹੈ ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਰਹੇਗੇ, 3,650 ਦਿਨ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ, 3,650 ਦਿਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਸ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਉਸ ਕੇ ਪਾਸ 7,000, ਐਸੇ ਇਤਨੇ ਦਿਨ, ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਸਕੋ ਜੋ ਹੈ ਦਿਨ ਕਾਟਤੇ ਜਾਵੇਗੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਿਤਨਾ ਭੈ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਿਲਤ ਕਿਤਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਹੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇਖੀ ਅਬ ਦਿਨ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਵਾਨ ਥਾ, ਅਬ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਿਆ ਹੈ 6 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਵੀ ਸਫੇਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਥ ਪਾਉਂ ਜੋ ਹੈ ਉਤਨਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ 6 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਜੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਲੈ ਲੈਂਗੇ। ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਤੇ ਕਿ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮ ਬਾਅਦ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਲੈ ਲੈਂਗੇ, ਹਮ ਬਾਅਦ ਮੇ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਛੋੜਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਤਵ ਮੇ ਮਨ ਸੇ ਨਹੀਂ ਛੂਟਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੇ ਵਹੀ ਆਸਕਤੀ ਲਗੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਸਕਤੀ ਲਗੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਸੇ ਅਭੀ ਵੀ ਆਸਕਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਭ ਛੋੜ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾ ਜੋ ਬੰਧਨ ਹੈ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਤੇ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੂੰ ਕਿ ਵੋ ਕੈਸੇ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰਤੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸੇ, ਸਦਾ ਹਮਨੇ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਸੇ ਛੋੜਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਵੋ ਰਾਧੇਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕੋ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੋ ਪੂਰਨ ਧਨਵਟ ਕਰੋ ਉਸਕੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਕਾਰਯ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਜੈਸੇ ਪਤਿਤ ਯੁਗ ਮੇਂ ਇਤਨੀ ਭਯੰਕਰ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸੇ ਘਿਰਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਘਰ ਛੋੜ ਦਿਆ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਹੀ ਛੋੜਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਮਨ ਸੇ ਨਾ ਵੀ ਛੋੜਾ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਛੋੜ ਦਿਆ ਉਸਨੇ, ਤੋ ਵੀ ਉਸਕੋ ਦੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਯ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਯ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਆਸਕਤੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੇਂ ਹੈ ਜੋ ਭਕਤ ਹੈ ਉਨਕਾ ਕਰਤਵਯ ਬਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਅਬ ਕੈਸੇ ਭਕਤੀ ਮੇਂ ਆਗੇ ਬੜਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੈਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕੋ ਭਗਵਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਔਰ ਖਿੱਚਾ ਜਾਏ, ਯੇ ਉਨਕਾ ਕਾਰਯ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸਕਾ ਜੋ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਦ ਗਤਵਾਨ ਨਾ ਨਿਰਬੰਧਨ ਦੇ, ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਾਮ ਮੇਂ ਜੋ ਆਜਾਤਾ ਹੈ ਵੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਤਾ, ਤੋ ਉਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਸਕੋ ਜੋ ਹੈ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਗਰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾ ਘਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ, ਇਤਨਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਤਨਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਥੱਕ ਜਾਏ ਰਾਤ ਕੋ ਔਰ ਬਿਸਤਰ ਪੇ ਸੋਤੇ ਹੀ ਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, ਇਤਨਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਤੀ ਹੈ, سارے جو ہے الٹے وچار تموگن ہوتا ہے نا, سارے الٹے وچار جو ہے رات کو آتے ہیں. اس لیے اس کو اتنا تھا جانا چاہیے کہ وہ کیا ہے بستر پکڑتے ہی سے نیند آ جائے. تو یہ جو ہے تب وہ جو ہے اس جال کو توڑ سکتا ہے, ورنہ بہت خطرناک ہے جال. جال میں سب سے بڑا جال ہے آنترک جال, آنترک جال انٹرنیٹ ہے نا, انٹرنیٹ آنترک جال ہندی میں یہ تو ہے نا آنترک جال. تو جو ہے یہ جال ہے بہت خطرناک ہے. تو اس انٹرنیٹ میں ہم لوگ پھنس چکے ہیں, آنترک جال میں پھنس چکے ہیں. تو اس لیے اس جال کو جو ہے توڑنا ہوگا. اور جو ہے بلال مہاراج بہت اچھا بتا رہے ہیں اس میں, ہم کچھ دو تین شلوک ہیں, ویسے تو بہت شلوک ہیں اس میں, لیکن اتنا ہمارے پاس سمے کی کمی ہے, ہم لوگ بلال مہاراج کا تھوڑا سا جو ہے بتا رہے ہیں اس میں. کیونکہ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ہو چکا ہے, ہمارے مندر میں بھی چل رہا ہے کہ بہت لوگ جو ہے وہ گرست کی اور بھاگ رہے ہیں, اور گرست والے پریشان ہو رہے ہیں. ایک ہمارے بھکت ہیں گرست, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ ہاں کئی برہمچاری گرست کیوں بن رہے ہیں, حالانکہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں. ویسا بولا بھائی, تو ہم نے بولا پھر آپ برہمچاری کلاس دیجیے. ہاں واسطے میں گرستوں کو دینا چاہیے برہمچاری کلاس, کیونکہ انہیں پورا انوبھوتی ہوتی ہے, پورا ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ واسطے میں کیا چل رہا ہے گھر میں. ہم لوگوں کو تو وہ پتہ نہیں ہے, ابھی ہو سکتا ہے پتہ لگے, لیکن وہاں کے پاس نہ لگے تو اچھا ہے. لیکن جو ہے گرستوں کو جو ہے وہ پورتا جانتے ہیں کہ کیسا چلتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا اگنی جیسے ہوتی ہے نا, جیسے اس میں کئی جو ہے پتنگیں گھومتے ہیں, تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ اگنی جو ہے بہت میرے جو ہے بھوگنے کی چیز ہے, میرے بھوگنے کی چیز ہے. وہ اس میں گھومتا ہے مگن ہو جاتا ہے, پورا پاگل کی طرح مگن ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہے نا, یہ میرے بھوگنے کی چیز ہے میرے. لیکن کیا ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے جیسے اس کو بھوگتا ہے, جل جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے جو گرست سنسار کو بھوگنا چاہتا ہے وہ اسی طریقے سے بہت چکاچون لگتی ہے. ہاں بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے اس چکاچون میں, مایا دکھاتی ہے کہ دیکھو کتنی چکاچون ہے یہ. لیکن جیسے ہی اس کو بھوگتا ہے تو اسے معلوم پڑتا ہے او ہو میں کہاں پھنس گیا, یہ تو واسطو میں بھوگ کی چیز نہیں تھی. تو یہی یہاں پہ جو ہے پرہلاد مہاراج جو ہے اپنے ان کو بتا رہے ہیں جو سہپاٹھی ہے ان کے ودیالیہ میں. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ کو گریشو کمان آسکتم اچے آتمنم اجتیندریا اس نے پاشے درنا مدد اسے ویموچتم. ایسا کون منش ہوگا جو اپنی اندریوں کو وش میں کرنے میں اسمرتھ ہونے کے کارن گرست جیون میں اتیادھک آست ہو کر اپنے آپ کو مکت کر سکے. تو یہ جو ہے بڑا مشکل ہے. اس نے پاش, اس نے جو ہے اس نے ہوتا ہے اور پاش مطلب پاش بند جاتا ہے نا, رسی سے بند جاتا ہے. حالانکہ رسی دکھائی نہیں دیتی ہے, ایسا نہیں کہ کوئی دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی رسی سے بندھے ہوئے ہیں, لیکن ایسا جو ہے یہ ایسا پاش ہے کہ رسی کاٹ سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں کاٹ سکتے, بند جاتا ہے چیز پوری طریقے سے. اس نے اور درن کہہ رہے ہیں بہت ہی درن ہے, درن ہے اس کو کاٹنا. کون چھوڑنا چاہے گا جب اس کے پتنی اور بچی آ جائیں گے اور اس سے اسنیہ ہو جائے گا, کون چھوڑنا چاہے گا. اس لیے اچھا ہے چلا وہ پرہلاد مہاراج ان کو اپدیش دے رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ کیا کرو بھکت بنو بھگوان کے, کیونکہ وہ دیتوں کے پتر تھے سارے. تو اس لیے جو ہے بہت ہی بھیانک یہ پاش ہے, بہت ہی بھیانک پاش ہے. ہردے گرنتی, ہردے گرنتی جو ہے نا, یہ ہردے میں ایک گرنتی بن جاتی ہے, گرنتی بن جاتی ہے, بہت بھیانک گرنتی بن جاتی ہے. اس گرنتی کو یہ نوٹ اتنی تکلیف ہوتی ہے, شاستر میں بتایا گیا ہے کہ جیسے کوئی بہت مضبوط رسی ہو اس کو بہت تیز باندھ دیا جائے, کئی گاٹھے باندھ دیا جائیں, اور اوپر سے پھر اس کو گھی گھی لگا دیا جائے گھی, اور پھر جو ہے اس کو سمے رکھنے کے بعد پھر کو بولا جائے کہ اب اس کو کھولو. تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کھولنا, بڑا مشکل ہوتا ہے کھولنا. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ ہردے گرنتی, یہ ہردے میں گرنتی جو بن جاتی ہے, یہ استری پرش کا جو آسکتی ہے, یہ بہت ہی بھیانک آسکتی ہے, بہت بھیانک آسکتی ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے پاس کو کیسے توڑو گے. اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ کو کیا پڑے گی, کہہ رہے ہیں دھن کی آوشیکتا پڑے گی. پھر دھن کمانے کے لیے جاؤ گے اور طریقے طریقے سے دھن کماؤ گے. دیکھتے ہیں نا ہم لوگ जो है संसार में लोग कितने तरीके से धन कमाते हैं, कैसे भी सोचते हैं चाहे उसका धन हमारा हो जाए। हाँ बस यहाँ देखिए चोरी करते हैं, कुछ करते हैं, बहुत तरीके से जो है धन की आवश्यकता पड़ती है, और व्यक्ति जो है वो दिन रात इसी में मग्न हो जाता है, दिन रात यही कार्य करता रहेगा तो इसलिए बहुत ही मुश्किल होगा। फिर कैसे उस बंधन को तोड़ोगे? और से बातें बता रहे हैं, कथम प्रियाया अनुकंपितायाम संगम रहस्य रुचिरां सुमंत्रा। जब प्रिया घर में आएगी, प्रिया घर में आएगी तो क्या होगा, अनुकंपिताया वो सोचेगा कि ये मेरी स्नेह की पात्रा है। क्यों स्नेह की पात्रा है? क्यों? इसने बड़ी अनुकंपा की है, अनुकंपिताया बड़ी बड़ी कृपा की है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम क्षण में, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी क्षण में आई है, अब मैं कैसे उसको छोड़ूं। तो बहुत ही जो है वो उससे आसक्त हो जाता है। तो बताया शास्त्र में कि स्त्री का सौंदर्य और स्नेह जीव का बहुत बड़ा बंधन का कारण है, बहुत बंधन का कारण है। तो अच्छा है कि जो है एक बार एक सार्वम प्रभु बता रहे थे कि दो दो भक्त थे, तो उनकी जो है एक की स्त्री जो है वो बहुत कड़क थी और एक की स्त्री जो है बहुत ही भक्त थी, सहायता करती थी, तो वो दोनों बड़े खुश थे। तो एक महात्मा जी आया तो उसने उसने देखा कि ये बड़ा खुश दोनों नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला आप इतना क्यों खुश नजर आ रहे हो? तो एक पहले ने बोला कि देखो मेरी स्त्री बहुत भक्त है और बहुत हेल्प करती है ना, मैं पूजा वूजा करता हूँ सब में बड़ी हेल्प करती है, बड़ा अच्छा है चल रहा है। दूसरे से पूछा कि आप क्यों खुश हैं? तो बोले ये इतनी इतनी कठोर है, इतना कड़ा बोलती है कि मेरी इससे आसक्ति नहीं होती है, तो अच्छा है। तो इस तरीके से जो है बहुत ही जो है ये अनुकंपित आया जाता है, और संग रहस्य रुचिराम मंत्रास, और फिर जो है उनका संग होगा और रुचिकर बातें होंगी, रुचिकर बातें होंगी। देखा है कि जो है स्त्री और पुरुष में जब बातचीत होती है तो बहुत समय चला जाता है, इतना समय चला जाता है कि उनको पता ही नहीं लगता। एक बार हम लोग मैं अपने रूम में बैठा था तो वहाँ पे पीछे हमारे पानी सब लोग पीने आते हैं, तो कई जो है बहुत लोग आते हैं, लड़के लड़के भी बहुत आते हैं पीने पानी। तो मैंने एक बार सोचा कि देखो क्या बातें करते हैं तो मैंने थोड़ी देर सुनता हूँ ये क्या बात करते हैं ना, क्या इनको इतना क्या आनंद मिलता है इनको जो बात करते हैं। तो थोड़ी देर मैंने कान लगाया तो वो पूछ रहे थे कि अच्छा ये बताओ तुम बचपन में क्या करते थे। हाँ तो वो बेचारा बता रहा था मैं बचपन में ये कर रहा था, बड़ा रुचिकर, सिर्फ वो एक शब्द बोलती बड़ा अमृतमय लगता था उसको कि ये मुझसे कुछ पूछ रही है। हाँ बड़ा उसे अमृत, हाँ, और इतनी अगर आप प्रज्वलता केंद्र देखना चाहते हैं कि हाँ मैं आज देखना चाहता हूँ प्रज्वलता क्या होती है, तो दो लड़का लड़की जब आपस में बैठे तो सुन लो कि वो क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास। यहाँ मैं बचपन में बहुत मांस खाता था, ये वो ऐसे बोला था, कहते अच्छा अरे तू तो बड़ा गंदा है, तो पहले क्यों नहीं सोचा गंदा, अब उसको पता लग रहा है कि इतना गंदा है। कहते हम तो ब्राह्मण फैमिली से हैं, हम तो कभी मांस नहीं खाए, तुम इतना मांस खाते हैं। वो कहता नहीं नहीं अगर तुम बोलोगे तो छोड़ भी दूंगा ऐसी बात, तो इस फिर मैंने छोड़ दिया जाता है जाना तो है बड़ी। तो इस तरीके से जो है बहुत ही बजल्पा है ना, और लेकिन वो भी उसको रुचिकर लग रही है ना, दिन रात बातचीत, दिन रात बातचीत बात चलती रहती है और समय का पता ही नहीं लगता। रास्ते में आप जाते हैं ना देखते हैं कोई परवाह नहीं है, कहीं भी बातचीत चल रहे हैं, लड़के लड़की कर रहे हैं, लेकिन उसको उनको बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद लगता है कि यही जो है ब्रह्मानंद है, और दूसरे ब्रह्मानंद को क्या कर रहे हैं, यही आनंद है, बड़ा रुचिकर लगता है। तो ये जो है क्या कह रहे हैं कि हाँ संगम रहस्य रुचिकर मंत्र, तो ये उनका मंत्र होता है, ये मंत्र बनता है, जैसे हमारे भक्त लोग हरे कृष्ण करते हैं तो वो दिन भर उसके चिंतन में, और कब जो है ये छुट्टी होगी क्या होगी, मैं जाऊँ उससे दोबारा मिलूँ बातचीत करूँ, आपस में मिलते हैं, तारे भी टूटते हैं, तारे भी टूटते हैं। एक बार एक हमारे भक्त आए थे तो हमसे बोले थे फौजी, बहुत सीधा भक्त, बिल्कुल सीधा सीधा भक्त, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। मैंने बोला क्या हो गया, अचानक कैसे आशीर्वाद मांग रहे हो? कह रहे हैं प्रभु जी हम ग्रस्त लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं, ग्रस्ता में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अच्छा ग्रस्ता में प्रवेश कर रहा हूँ, फिर तारे तो नहीं तोड़ोगे? कहता है प्रभु जी अब क्या करें, अब शादी करें तो तोड़ना तो पड़ेंगे। भैया इतना सीधा साधा आदमी ये भी तारे तोड़ रहा है। सही में ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ताले तोड़ दूंगा। ये एक बार एक कंपनी आई थी, वो अखबार में आया था, एक कंपनी आई थी तो उसने क्या करा, ये होता ना कौन सा वैलेंटाइन डे बोलते हैं, वैलेंटाइन डे के दिन अखबार में आया था कि अगर आप अपने प्रेमिका को प्रेम करते हो तो उसको तारे गिफ्ट करो, है ना, और हम देंगे आपको तारे। तो इतने लोग बेवकूफ़ हैं, लोग लेने के गए तारे, हाँ सही में, और उस व्यक्ति ने 5,000 रुपये का एक तारा भेजा। वो दिखाता था तारा, बताइए आपको कौन सा तारा पसंद है, तो बोलता था ये तारा पसंद है, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट दे देता था उसको कि ये आपका ये तारा आपका हो गया। वो दिखाता था पूरा कंप्यूटर पे, ये देखो, तो वो तारा दे देता था उसको, पूरा उसका वो बना देता था, पूरा उसका चित्र बना देता था तारे का, उसको देता था। तो वो जो है वो उसको देता था, प्रेमिका को, देखो मैं आपके लिए तारा तोड़ के लाया हूँ। हाँ, तो इस तरीके से 5,000 रुपये उसने कई तारे भेज डाले। हाँ, अब वो सोच रहा है मैं, हाँ देखो कितना बड़ा कार्य कर गया कि मैंने आज वैलेंटाइन डे के दिन अपने प्रेमिका को तारा दिया। हाँ, तो इतनी बेहूबी है। तो ये क्या है, संगम रहस्य रुचिकरण रुचि रथम मंत्रा। तो ये जो है वो इस तरीके से फंस जाता है और बहुत जो है रुचि कर उसको बातें लगती हैं और जाल को जो है वो बढ़ाता चला जाता है, और क्या करना है, फिर क्या है, सुहृद उनके सुहृद यानी कि पत्नी के जो रिश्तेदार हैं उनके प्रति भी आसक्ति हो जाती है, वो उनके शादियाँ उनके ये वो कई जो है वो यानी कि रिश्ते जो हैं वो डबल हो जाते हैं। आपके जितने रिश्तेदार हैं उनके भी रिश्तेदार उतने ही हैं, तो अब क्या हुआ, रिश्ते डबल हो गए। आप उनके सुख दुख में भी आपको साथ देना है और जो है और आसक्ति का जो है बढ़ता जा रहा है। तब स्नेह सुषुनाम, तब जो है ये स्नेह बढ़ता जाएगा और उसके बाद क्या होगा, सुषुनाम। वास्तव में देखा जाए तो ये है ही क्या, एक बार हम देख रहे हैं वास्तव में हमारे भक्त है हरिनारायण बाबू, तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया था कि ये जो ये शरीर है ना, ये शरीर जिससे हम लोग आसक्त हैं, ये सिर्फ एक खाल है जो कि केवल ये पृथ्वी का अंश है। हाँ, ये पृथ्वी से बना है, ये फ्लैश से बना है, ये सिर्फ किससे बना है, पृथ्वी से बना है, सिर्फ पृथ्वी से बना है और इसमें कुछ भी नहीं है। अंदर जो है फिर जल अग्नि वायु आकाश बाकी सब कुछ है। ये जो हम खाल जिससे हम आनंदित होना चाहते हैं, ये सिर्फ पृथ्वी का ही एक अंश है। पूरा शरीर का, पूरा शरीर खाल जो है वो सिर्फ पृथ्वी का अंश है और उस अंश को ही हम भोगना चाहते हैं, इसीलिए हम संसार में सिर्फ ये है। और लेकिन उस अंश को भोगने के लिए हम लोग इतने लालायित हैं, इतने लालायित हैं कि कोई भी जीव इसे बच नहीं पा रहा। सिर्फ इतना ही है। एक बार हम मैं जा रहा था गड़ी हमारे जो है मंदिर के बाहर मार्केट है घड़ी में, वहाँ जा रहा था तो मैं देख रहा था कि एक मुसलमान जो है वो बेच रहा है मांस, बकरे टंगे हुए हैं। तो वहाँ मैं देखता रहा तो मुझे थोड़ा वैराग्य सा महसूस हो रहा था कि वास्तव में जो है यही हमारे शरीर में है, ये सिर्फ खाल, इससे खाल उतर गई है, अंदर वही है सब कुछ, है ना, टंगे हुए हैं। तो सिर्फ यही है जिसको हम भोगना चाह रहे हैं। वहाँ पर मैं एक मिनट तक खड़ा रह गया, मैं हैरान हो गया। वो सोचता रहा कि यार वास्तव में ये देखो कितनी बेखूबी है हमारी, कितने मूर्ख हैं हम लोग। इसके चक्कर में जो हम लोग कितना स्मरण करते हैं, कितना सोचते हैं, और वो सिर्फ है ही, सिर्फ खाल और है क्या, कुछ ही नहीं है और सिर्फ खाल है। बस इसी को जो है हम भोगना चाहते हैं और इसी के कारण सिर्फ हमें संसार में, इसी के कारण ही जो है हमारे क्या है, कई भक्त लोग छोड़ के जा रहे हैं। हमारा क्या होगा हम पता नहीं, लेकिन जो है शास्त्र जैसे बता रहे हैं, हम ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही दृढ़ बंधन है, बहुत दृढ़ बंधन है। और है भी क्या, इस शरीर को कुछ आनंद नहीं आ रहा है, ये तो क्या, ये तो जड़ है, इसको क्या आनंद आएगा, है ना। एक जड़ दूसरे जड़ को क्या आनंद देगा, कुछ भी आनंद नहीं होगा। ये सिर्फ मन को आनंद हो रहा है, मन कह रहा है कि हाँ मैं आनंदित हो रहा हूँ, ये मेरे भोगने की चीज़ है और अब मैं आनंदित हो रहा हूँ। सिर्फ ये मन का खेल है। और मन है भी क्या, ये भी हम सोच सकते हैं। हृदय के ऊपर जो लास्ट कवरिंग है ना, जो लास्ट कवरिंग है वो आती है चित्त की, और चित्त को जिस मैल ने कवर कर रखा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का और दूषित कर्म जो हमारे हैं, वो जो मैल है उसको सिर्फ मन कहते हैं। मन एक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे हृदय है एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है ना हमारे हृदय में, हृदय है, लेकिन मन ऐसा नहीं है। मन उसी को कहते हैं, ये जो मैल है चित्त की, जो मैल है उसी को मन कहते हैं, है ना। और वो जो है आपको सुख और दुख की अनुभूति करा रहा है कि ये देखो हम जो है सुखी हो रहे हैं, आहा कितना आनंद आनंद है ना, कि मेरे साथ जो है स्त्री है तो बहुत आनंदित हो रहा है ना। एक गायक बोलता है कि मैं तुम्हें दिल का आलम क्या बताऊं कि एक चेहरे ने मुझे बहुत प्यार से देखा, है ना, वो चेहरे ने देख लिया तो क्या बड़ी बात हो गई, वो एक खाल है सिर्फ, ये सिर्फ खाल का टुकड़ा है, उसने आपको देख लिया तो बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। तो बहुत ही हमारी मेंटालिटी बड़ी लो हो गई है, बहुत मेंटालिटी लो हो गई है कि हम लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि ये हमें आनंद कर रही है, आनंद दे रही है, या ये आनंद दे रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, केवल मन की बात है सिर्फ। और फिर जो है यहाँ बता रहे थे कि परस्पर मिलन से तब स्नेह स्नेहिता शिशुनाम, तब उसके परस्पर मिलन से एक और खाल उत्पन्न होती है, और वो क्या है, शिशु नाम, बच्चे, वो भी एक खाल का ही टुकड़ा है, लेकिन उस खाल से भी व्यक्ति कितना आसक्त हो जाता है, वो कहाँ से आया है, किसका बच्चा था, क्या है, आज आपके पास आ गया तो बस हमने माने कि हाँ अब ये मेरा है बस। और फिर उससे इतना दृढ़ बंधन हो जाता है। एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि हमारे गांव में एक भक्त था, नहीं एक व्यक्ति था, वो कथा था सुन रहा था, बहुत काफ़ी समय से सुन रहा था, तो वैराग हो गया उसको कि जो है ये संसार कितना ख़राब है, अब मुझे संसार में रहना नहीं चाहिए, और वो चला गया तो बस पकड़ने गया और पूछने कहाँ जा रहे हैं, तो वृंदावन जा रहा हूँ, अब मैं सिर्फ वृंदावन में रहूँगा, वहीं भजन करूँगा। तो उसकी पत्नी को पता पड़ गया कि इस तरीके से जो है मेरा पति वैरागी हो गया, उसने कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ अपने बच्चे को बस स्टॉप पे भेज दिया, जहाँ से वो बस पकड़ रहा था वहाँ भेज दिया। बच्चे ने देखा और बच्चे ने सिर्फ हरे कृष्णा भी नहीं किया, पता नहीं जो भी किया, सिर्फ देखा और पापा पापा बोल दिया। वो इतना पापा बोला तो इतना वो हो उस दिमाग में सारा, जितना भी क्लास सुना था सबको सुना था, वो सारा निकल गया उसके दिमाग से एकदम। उसने बच्चे को गले उठाया और चूमने चामने लगा और तुरंत वापस घर पे गया। फिर नहीं आया वो। तो इस तरीके से जो है इस खाल से जो खाल उत्पन्न होती है उस खाल से बहुत आसक्ति हो जाती है, बहुत अटैचमेंट हो जाता है। तो कहना प्रहलाद महाराज वो कैसे छोड़ोगे, और कला छणाम अनुरक्त चित्ता, वो चित्त को जो है उसका कला छणाम, यानी कि जो तोती बोली है जो उसकी, वो आपके चित्त को जो है क्या करे, अनुरक्त कर लेगी और हरण कर लेगी आपके चित्त को। तो ये जो है इसने पाश है, बहुत दृढ़ बंधन है, उसकी तोती बोली। एक बार उसने बोल दिया कि अरे देखो मम्मी या पापा, तो बहुत आनंदित हो जाता है, होंगे आनंदित होते होंगे, हमें तो पता नहीं है, जो अनुभव कर रहे हैं हमें तो पता नहीं है कितना आनंद आता होगा जब माता मम्मी पापा बोलते होंगे, तो बहुत जो है जी इससे बड़ा आसक्त हो जाता है, बहुत आसक्ति हो जाती है। यहाँ तक कि जब वो बच्ची हो अगर ससुराल चली जाती है, ससुराल बोलते हैं मैं क्या बोलते हैं, जब पति के घर जाती है मैं के ससुराल बोलते हैं, ससुराल चली जाती है तो फिर अच्छा मैके जो बोलते हैं अपने 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 घर में है मायके, अच्छा मायके, तो जो ससुराल चली जाती है तो वहाँ भी जब चली जाती है फिर भी जो है उसको बहुत आसक्ति होती है, उसको याद आती रहती है कैसी होगी क्या खा रही होगी, ये बहुत सोचती रहती है। जैसे हम लोग मंदिर में आ गए तो मेरी माता जी दिन भर सोचती रहती थी कि अरे, वो कहती थी जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वो खाते होंगे नहीं खाते होंगे। मैंने बोला हम आपसे अच्छा खाते हैं, आप चिंता मत करो, ये सब मत छोड़ो दिया। बहुत उनको समझाया और फिर एक बार मंदिर में घुमा के लाया था, देखो फिर मैंने जान लूसी ना उनके सामने राजभोग ये वो सब रख, मैंने बोला हम लोग ये सारा खाते हैं। कहते अच्छा तुम ऐसा खाते हो, मैंने बोला हाँ ये सब खाते हैं हम लोग। अच्छा हालांकि राजभोग देखने को ही नहीं मिलता लेकिन उनके सामने रख दिया हमने। सुबह का भी जो है सुबह 8 बजे का 8 बजे का प्रसाद लाए, देखो भैया ये देखो सुबह पूरी मिलती है ये मिलता है, दोपहर को ये सुबह 9 बजे ये मिलता है, शाम दोपहर को ये मिलता है, 8 टाइम मिलता है प्रसाद, लेकिन हम नहीं खाते, हम सब 3 टाइम खाते हैं। अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छे नहीं, इतना अच्छा प्रसाद मिलता है तो वो तो संतुष्ट हुई, हाँ भाई यहाँ पे अच्छी जगह है बच्चा। तो बड़ा जो है अटैचमेंट होता है उससे, बड़ा अटैचमेंट होता है। तो इस तरीके से सिर्फ जो प्रसाद महाराज बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं ज्ञान मनोज्ञ रूप परिच्छन दाश्यम, और दूसरे भी चीज़ें वैसे कई भी आ सकते होती है, क्या है घर में फर्नीचर है गाड़ी है धन है, इन सबसे भी बहुत अटैचमेंट हो जाता है, बड़ा अटैचमेंट हो जाता है, तो ये कैसे छोड़ोगे। और पशु भ्रत वर्गान, पशु तो कह रहे हैं नहीं गाड़ी है, पशु पहले तो पशु होते थे तो समय जब ये लिख रहे हैं, तो इस तरीके से जो है बता रहे हैं इन चीज़ों से भी बड़ी आसक्ति हो जाती है, हालांकि ये हमसे कोई जन्मे नहीं है, लेकिन इनको सर हम लोग क्या है परचेज कर लिए खरीद लिए, तो इससे बड़ी आसक्ति जाती है कि हमने हम ये हमारी हो गई। और आसक्ति कहाँ से है, सिर्फ मन से है, वहीं से जो हमने बताया, तो ये है। और आप क्या बता रहे हैं कि तेजेत कोश दृत कृदि वेहान कर्माणि लोभात रवि दत्त कामा, तो जैसे बता रहे कि कोश का जो कीड़ा होता है ना, कोश बोलते हैं ना कोश जो बनाता है कीड़ा, तो वो जो है कोश बनाता जाता है और उसमें क्या होता है फंस जाता है, अब वो निकलने का रास्ता नहीं छोड़ता। हमको भी निकलना होगा, 9 बच्चे हैं, हम भी उसमें फंस गए, ये बहुत कई से लोग हैं इसमें, तो बहुत कई से लोग हैं, हम लेना चाह रहे थे 3-4 लोग लेना चाह रहे थे लेकिन अभी, तो उस कोश में जो है वो बन जाता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं छोड़ता। तो उसी तरीके से जीव जो है बहुत फंसता जा रहा है अपने आप को फंसता जा रहा है, लेकिन अगर हम बोल दें कि हाँ चलो भाई वृंदावन चलो ये चलो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। हमने ऐसे देखे हैं, हमारे कई जो है हमारे कॉन्टेक्ट में हैं लोग, तो वो आते हैं कभी कभी मंदिर में आते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि चलो वृंदावन चलो, अरे नहीं बच्चे की शादी हो जाए, तो बच्चे की शादी भी हो गई चलो अच्छा चलो, अरे नहीं अभी कहाँ सुबह अभी नया नया व्यक्ति है जिम्मेदारी बहुत है, चलेंगे चांदी चौक में एक व्यक्ति रहता है, चांदी चौक में एक व्यक्ति है उसको मार रहा, बोलते हैं हाँ जाएंगे अभी तो एक बार भी नहीं जा पाया कई दिनों से टच में, हालांकि उसने माला स्टार्ट कर दी है। तो इस तरीके से जो है कोश को थोड़ा खोल देना चाहिए, और मंदिरों में और वैष्णवों का भक्तों का जो है संग में जाना चाहिए और संग करना चाहिए, अगर दूसरी जगह नहीं जा सके तो कम से कम यहाँ उस जो है कीड़े को निकलना चाहिए बाहर। तो कहाँ कब तक कर सकते अच्छा 5-10 मिनट्स 5-10-15 मिनट्स तो तो क्या बता रहे हैं कि ये जो है कोश में वो व्यक्ति फंसता जा रहा है और उसको छोड़ने रहा है, और एक जो है वो एक बड़ा अच्छा एक कृष्ण बोधाचार्य महाराज थे, हालांकि शंकराचार्य के संप्रदाय से थे, कृष्ण बोधाचार्य महाराज हम ये बता रहे हैं कि देखो जो प्रवचन करते हैं वो भी फंसते हैं, किस तरीके से फंसते हैं, ऐसा नहीं कि वो मुक्त हो गए, हम हालांकि प्रवचन कर रहे हैं लेकिन हमारी फिर भी आसक्ति जाती है। यही जो है हमने पहले शायद बताया था युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा था कि सबसे बड़ी आसक्ति क्या है, तो एक भक्त ने पूछा था, पता नहीं कौन भक्त थे, तो युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि सबसे बड़ी आसक्ति क्या है, आपने तो यक्ष को बताया था कि सबसे बड़ी आसक्ति ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी हमारे रिश्तेदार जो है शरीर छोड़ रहे हैं, फिर भी हम ये समझ नहीं पाते कि हमारा भी ये लक्ष्य होगा। वो कहते हैं हाँ ये सबसे बड़ी आसक्ति है। उन्हें बोला नहीं, आपने यक्ष को तो समझा दिया लेकिन मैं नहीं मानता कि ये सबसे बड़ी आसक्ति है, इससे बड़ी भी कोई आसक्ति हो सकती है। तब युधिष्ठिर महाराज ने बोला हाँ इससे बड़ी भी एक आसक्ति है। उन्होंने बोला क्या? उन्हें बोला है कि एक वैष्णव है, विष्णु का भक्त है, हैं, और वो ये जानता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और इस पर वो प्रवचन भी करता है लेकिन फिर भी वो आसक्त हो जाता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। तब वो जो है भक्त वास्तव में संतुष्ट हुआ कि वास्तव में सबसे बड़ी आसक्ति ये है। इसी तरीके से एक महाराज थे कृष्ण बोधाश्रय महाराज, तो वो जो है इसी तरीके से प्रवचन कर रहे थे। जवानी में ही जो है उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया, बहुत बड़ा त्याग किया उन्होंने। और एक बार वो जो है प्रवचन कर रहे थे कि किस तरीके से जीव को जो है विरक्त होना चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं, है कि ये जो है भौतिक संसार को किस तरीके से छोड़ना चाहिए, इसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, कैसे जो है इससे विरक्त होना चाहिए, ये सारा प्रवचन कर रहे थे। तभी उनकी जो है निगाह अपनी पत्नी में पड़ी। वो पत्नी आई हुई थी उस दिन लेक्चर में, तो उनको देख रहे थे कई बार। बाद में जब लेक्चर समाप्त हुआ तो उन्होंने उनको बुलाया, इधर आओ। तो वो गई तो उन्होंने बोला तुम कब आई? तो पत्नी ने बोला कि आप मुझे पहचानते हैं? समझा, अरे ये कैसी बात कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं पहचानता, तुम्हारा ये नाम है, तुम मेरी पत्नी थी, ये बस सबको बताया। तो उसने बोला कि अभी तो आप इतना प्रवचन कर रहे थे कि कैसे आसक्ति छोड़नी चाहिए और खुद तो अभी तक आसक्त हैं मुझसे आप। जैसे उन्होंने ये शब्द बोला उसके बाद कृष्ण बोधाचार्य महाराज उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोले और सीधे वहाँ से चले गए बद्रिकाश्रम। वहाँ वो भजन करने लगे। छोड़ दिया उन्होंने कि आज पत्नी ने कितना तगड़ा तमाचा मारा है, वास्तव में मैं ही प्रवचन कर रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ आसक्ति को कैसे त्यागना चाहिए और मैं ही खुद ही आ सकता हूँ। तो वो जो है लगभग 3-4 साल तक वो बद्रिकाश्रम में ही रहे और वास्तव में उन्होंने आसक्ति को सचमुच काटा और फिर वापस आए और फिर जो है वो दोबारा उन्होंने दिशा दिशा देना आरम्भ किया। तो इस तरीके से ये जो बहुत ही दृढ़ आसक्ति है, बहुत ही दृढ़ आसक्ति है इसको छोड़ना। तो और भी जो है कई आसक्तियाँ होती हैं, भक्त जो है कई बार भक्त बन जाते हैं लेकिन फिर भी जो है पुरानी यादें बहुत रह जाती हैं, बहुत रह जाती हैं कि जैसे कोई अगर कुछ बोल दे तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो, है ना, मैं पहले ये था, मैं वो था, वो उसी वाले उसकी उसकी जो है वो चेतना जो है वो उससे निकल नहीं पाता है। हाँ, थोड़ा भी अगर कोई मान लो डांट दे, कौन है यहाँ पे वो टेम्पल का मैडम, हाँ क्या ना कदम बिहारी वो, है ना, तो मान लीजिए वो छोड़ के आया, सब पत्नी उतनी सब कुछ छोड़ के आया, हाँ, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें रुचिकर बातें होती थी, सब छोड़ के यहाँ पे आ गया बेचारा और यहाँ पे जो है उसको डांट दिया, क्या तुम ये हो तुम वो हो। सोचेगा क्या यार, कहाँ घर में इतना अच्छा वो बातें करती थी, इतना प्रिय खिलाती थी, ये करती थी, और ये कहाँ का दुर्वासा मुनि आ गया ये मुझे डांट रहा है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि वो जो है ना वो अटैचमेंट छूटता नहीं है। तो ये भी ये जो है बड़ी आसक्ति रहती है जीव के मन में। तो मन से वास्तव में मन से भी ये आसक्ति को काटना होगा। तो ये बहुत जो है तकड़ी आसक्ति है। और बता रहे कुटुंब पोषाय व्यय निजायु, कुटुंब को पोषण करते करते उसकी क्या है निज आयु क्या हो रही है व्यन। व्यन का मतलब बता रहे हैं कि क्या है बीतती जा रही है उसकी आयु, निज आयु अपनी आयु कुटुंब का पोषण करते करते क्या है बीतती जा रही है। पर क्या हुआ ना बुद्धि अर्थे व्यहतम प्रमता, कि फिर भी जो है वो बुद्धू ना बुद्धि अर्थम, वो बुद्धू ये समझ नहीं पा रहा है कि जिससे मैं से आसक्ति नहीं करनी चाहिए उससे मैं अटैचमेंट हूँ और जिससे मुझे आसक्ति करनी चाहिए उसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, ना बुद्धते अर्थम व्यहतम प्रमत्ता, प्रमत्ता मतलब होता है कि पूर्ण रूप से क्या है पागल है, प्रकर्ष रूपेण मत्ता, मत्ता मतलब होता है पागल, और पूर्ण रूप से जो पागल होता है, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं कि एक शराबी है, शराबी क्या होता है, वो मत होता है, मत नशे में है, मदोश है, उसको होश ही नहीं है अपने कपड़ों का उसका, लेकिन इसको होश है कि वह कैसा कपड़ा पहना है क्या है, सब कुछ होश है, फिर भी वो बुद्धू है, फिर भी जो है उसमें बहुत आसक्ति है हर चीज़ में, उसकी हर चीज़ में आसक्ति है, तो प्रमत्ता पूर्ण रूप से जो है वो फंसा हुआ है, और क्या करता है, सर्वत्र तापते यदु अखिल अखिल तात्मा निर्वेदते ना सुकुटुम्ब रामा, तो ऐसा जो है वो क्या है तापत रह, कई प्रकार से तापत रह से घिरा रहता है, सुख दुखों से घिरा रहता है, लेकिन फिर भी वो जो है वो क्या कहता है निर्वते न सुकुटुम्ब रामा, और वो जो है उससे निकल नहीं पाता है, और सुकुटुम्ब रामा, अरे कहाँ तापत रह है, क्या है, जैसे ही पत्नी ने या बच्चों ने मीठी बातें की तो वो जो है उसमें रमण करने लगता है, सुकुटुम्ब रामा, अपने कुटुंब में रमण करने लगता है, सुकुटुम्ब रामा, वास्तव में होना तो चाहिए क्या है कृष्ण रामा, भक्त रामा होना चाहिए, लेकिन वो जो है कुटुंब रामा वाला टाइम वो जो है बहुत तेज़ी से बीत रहा है। तो यहाँ पर जो है हम और भी कई श्लोक हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे यहाँ से जो है दूसरी ओर बढ़ते हैं कि फिर इससे हम कैसे बचा जाए, तो बता रहे हैं प्रहलाद महाराज कि जब कृष्ण से आसक्ति कर ली, जब कृष्ण से अगर आसक्त हो जाता है, फिर जो है ये व्यक्ति जो है वो जाल को यानी कि इस बंधन को और हृदय ग्रंथि को वो है वो तोड़ सकता है, विदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशय, तब वो जो है इस ग्रंथि को तोड़ सकता है, और अन्यथा और कोई उपाय है ही नहीं उसके पास। एक बार ये घटना याद है, एक बार भगवान राम जो है ना वो कुछ नहीं है, कुछ ऐसा ना कुछ ब्रह्मचारी थे, कुछ ब्रह्मचारी व्रतधारी और कई जो है वैसे भक्त लोग ऐसे कई थे, तो वो जो है उन्होंने ब्रह्मचार्य धारण कर लिया, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, ब्रह्मचारी बन गए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है ना उनका जप में और इनमें जो है मन उबने लगा, और वो सोच रहे थे कि क्या अच्छा होता हम भी कुटुंब कर लेते हैं, अच्छा रहता, और कहाँ हम लोग फंस गए, अब कहाँ यहाँ पर भी मन नहीं लग रहा है, उम्र भी बढ़ गई है, अब तो कुछ मिलेगी भी नहीं, लड़की भी नहीं मिलेगी, अब क्या करें, बहुत परेशान थे वो। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि भगवान राम ने जो है वो अहिल्या का उद्धार कर दिया, अहिल्या को कैसे बना दिया, पत्थर से नारी बन गई, और भगवान राम जो है वो क्या कर रहे हैं, इसी ओर आ रहे हैं, हमारे जो है वो इधर गांव से ही गुजरेंगे जहाँ वो भजन कर रहे थे, तो बहुत प्रसन्न हुए, सब बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान आहा बड़ी अनुकंपा की, बहुत कृपा की, आप लोग इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। अब वो क्या करने लगे, सारे जितने वो वहाँ के भक्त थे वो क्या करने लगे, बड़े बड़े पत्थर लाने लगे, बड़े बड़े पत्थर अपने आश्रम के आगे लगाने लगे, और यहाँ तक कि कोई कोई दो भी लगाने लगे, उन्होंने सोचा चलो बनेगी तो दो नारी तो बनी रही है, पत्थर को टच ही करना है उनको, और क्या करना है, चल बनी रही तो दो बना लेते हैं, है ना, दोनों काम आ जाएंगी, है ना, तो बेचारे वो दो दो पत्थर उठा के लाए, हाँ, और कई लोग जो है ना वो भारी भारी पत्थर उठा के ला रहे थे, ला सारे गोरे गोरे रहते हैं, पत्थर सब गोरे गोरे ला के ला रहे थे, किसी ने भी काला पत्थर नहीं उठाया, सब गोरे गोरे पत्थर ला रहे थे, और एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, कोई कोई भारी पत्थर ला रहा था कि ठीक है थोड़ा मोटी होगी तो जहाज जिएगी, मतलब इन्होंने सोचा होगा, कोई पतला भी ला रहा था, तो बेचारा सब लोगों ने जो है अपने आश्रम के आगे पत्थर ही पत्थर, पूरे आश्रम के जितने सब लोग थे सबने पत्थर ही पत्थर लगा दिए कि भैया बस अब जो है एक दिन की बात रह गई, भगवान कल ही आ रहे हैं, उनको मालूम पड़ा, आह सब लोग जो है तारे तोड़ने लगे रात में, तो फिर बस बोले एक दिन की बात है, कल से तारे टूटेंगे, और बेचारे जो है सपना देख रहे थे, और फिर जो है भगवान राम उस गांव में आए, जब भगवान राम आए तो तो बड़ा खुश हो गया कि भगवान आ गए आ गए आ गए। जब उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए उसके बाद उनकी आसक्ति सारी कट गई, फिर किसी की आसक्ति नहीं है कि किसी को भी इच्छा नहीं रही पत्नी प्राप्त करने की। वो सब जो है विरक्त हो गए कि वास्तव में ये है सौंदर्य, हम किस सौंदर्य के पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो पुजारियों से श्री प्रभुपाद जी ने रिक्वेस्ट की, जो पुजारी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि भगवान को बहुत सुंदर सजाएं, बहुत सुंदर सजाएं, और जितना भी जो है वो अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट वगैरह हैं बढ़िया से बजा लगाएं उनको, भगवान को इतना सुंदर बनाएं, इतना सुंदर बनाएं कि सारे जीव भगवान का जब दर्शन करें, दर्शन करते हैं उनकी आसक्ति छू जाए और इससे आसक्ति बढ़ जाए, कृष्ण से आसक्ति बढ़ जाए। तो पुजारियों से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा भगवान को सजाएं। और जो भक्त लोग हैं उनसे श्री प्रभुपाद ने प्रार्थना की कि आप लोग जो है खूब देर से दर्शन करो, दर्शन करो और चारों तरफ जैसे मंदिर में आप कहीं भी निगाह उठा लीजिए, आपको भगवान नजर आ रहे हैं ना, कहीं भी चारों तरफ आपके भगवान ही भगवान हैं, श्री प्रभुपाद है, वैष्णव हैं, तुलसी महारानी हैं, तो ये सब जो है कृष्ण का स्मरण कराती हैं। तो हमारे घर में भी, यहाँ आने के हमारे घर मतलब हमारे हमारे ब्रह्मचारियों के कमरे में भी इसी तरीके से होना चाहिए, चारों तरफ भगवानों का पोस्टर होना चाहिए, चारों तरफ राधा कृष्ण और महाप्रभु वगैरह चारों तरफ होना चाहिए। तो और हमेशा जब भी जब करें तो इनका दर्शन करते रहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब करते हुए आंखें बंद कर देते हैं, यहाँ कि जब हम लोग गाते हैं कीर्तन तन करते हैं तो वगैरह सामने होते हैं वो आंखें बंद कर देते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में आंखें बंद इसीलिए कर रहे हैं हम भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान तो भगवान तो सामने ही हैं, फिर आप आंखें बंद कर रहे हो उनको देख के दर्शन करके आरती करो तो ज़्यादा ज़्यादा प्रसन्नता होगी भगवान के इसमें। जब पट बंद हो जाए तब तब आँख बंद कर लो, तब आपने भी पट बंद कर लो, लेकिन जब तक भगवान के जो है दर्शन खुले हुए हैं तो भगवान को ही देखना चाहिए, कृष्ण को देखते ही कीर्तन करना चाहिए, कृष्ण को देखते ही जो है नाचना चाहिए। तो ये जो है ये जब आसक्ति हम बढ़ा देंगे, कृष्ण से आसक्ति बढ़ाएंगे तो ये आसक्ति जो है कम हो जाएगी। और जो भी हम लोग गाते हैं उसका अर्थ समझते हुए हमारे मन में स्मरण करता रहे, जैसे हम लोग गाते हैं चतुर्विदा श्री भगवत प्रसाद और स्वादान तृप्तां हरिभक्त संगान, कुछ भी आप ले लीजिए एक हमने ले लिया तो हाँ भाई चार प्रकार के जो पदार्थ है वो क्या कर रहे हैं गुरुदेव उसको भोग लगा रहे हैं। तो ये हमारे मन में स्मरण रहना चाहिए, अगर ये स्मरण नहीं रहेगा तो हम सिर्फ खाली मुँह चलाएंगे होंठ चलाएंगे बस गा दिया और कई बार ये पता नहीं लगेगा कि अरे इसने गाया नहीं गाया, अरे लाइन छोड़ दी, अरे नहीं लिखा नहीं छोड़ी भैया गाया तो था, गाया था अच्छा हाँ पता नहीं लगा कि उसने गाया था, है ना। कई बार तुलसी आरती जैसे हम लोग गाते हैं कई बार तो कई बार भक्त लोग कहते हैं अरे इसने ये गाया था इसने, तो कहते हैं हाँ गाया तो था अच्छा अच्छा मुझे पता नहीं, तो मन ही नहीं था उसका। तो जितना देखिए तुलसी आरती हम लोग गाते हैं कितनी सुंदर आरती है, उसमें क्या क्या बोला है, कितना डीप बोला है, अगर उसका अर्थ समझ जाए तो बहुत ही डीप अर्थ है तुलसी आरती जो श्री प्रभुपाद जी ने दी है। वैसे एक दूसरी आरती भी है नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयस प्रेयसी, वो दूसरी है तुलसी महारानी विंदे महारानी, हाँ वो है। लेकिन हमारे जो है श्री प्रभुपाद जी ने जो तुलसी आरती दी है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये निवेदन दरो सखीर अनुगत करो, यहाँ कोई छोटी चीज़ है सखीर अनुगत करो, कितनी बड़ी बात बोलना है। तो ये जो है हमारे निकल जाती है, हम भी गा लेते हैं अरे पता ही लगता हमने क्या गाया है ना, क्या बोल रहे हैं, सोचिए कि ए निवेदन दे रहो आपसे निवेदन दे रहा हूँ कि मुझे सखीर के अनुगत करो, सखी सखी के अनुगत करो, गोपी के अनुगत करो, ये आप सोचो ये दिमाग। और ये जो हम लोग गा रहे हैं ये हम सोचते रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, हाँ गुरुदेव ऐसे चार प्रकार के पदार्थ जो है भगवान को अर्पित कर रहे हैं, ये सारा सोच के जो है हम लोग ये करते रहे। और जब भी हरे कृष्ण करें तो हरे मतलब राधा रानी स्मरण हो, कृष्ण मतलब कृष्ण स्मरण हो, ऐसे स्मरण हो तो फिर देखो ये आसक्ति क्यों नहीं घटेगी हमारी, हम लोग कृष्ण का ही चिंतन करते रहें तो ये आसक्ति बहुत आसानी हो जाएगी काटना। अगर नहीं करेंगे हाँ हमने प्रवचन दे दिया, आपने सुन लिया काफी बंद नोट्स बना लिए किसी को सुना देंगे खत्म, کئی بار جو ہے لوگ نوٹس بناتے ہیں وہ کس لیے بناتے ہیں کہ ہمارا پروچن ہوگا تو ہم سنائیں گے. صحیح بات, کئی بار یہ بچار ہوتے ہیں کہ بڑے اچھی اچھی باتیں ہیں اس کو یاد کر لیں اور ہمارا پروچن ہوگا تو ہم سنائیں گے اس کو. لیکن ایسا کرنے سے ہمارا ہردے پریورتن نہیں ہوا. یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں ہمارے لیے کہی جا رہی ہیں, اور اس کو بہت گمبھیرتا سے لیں, بڑی گمبھیرتا سے لیں کہ ہاں واسطو میں ہم لوگ روز پروچن سن رہے ہیں لیکن ہم لوگ ہردے پریورتن نہیں ہو پا رہا. کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ ہم لوگ لاگو نہیں کر رہے ہیں اپنے پر, بالکل لاگو نہیں کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں ہاں یہ تو صرف سنانے والی باتیں ہیں, سنا دیں گے آگے چلیں, تو ہردے پریورتن نہیں ہوا. ہمیں سوچنا ہی پڑے گا کہ ہاں واسطو میں ہمیں گمبھیر ہونا ہے, ہمیں بھکتی سویکار کرنی ہے اور کرشن کا اسمرن کرنا ہے نا. کیا وہ آلویز ریمبر کرشنا نیور فورگیٹ آلویز, تو اس اسٹیج پہ آنا پڑے گا نا ہمیں. ہمیں بھی تو یہ ہمارے لیے تو بولا جا رہا ہے, شیلا پوائی نے یہ لکھا ہے تو یہ ایسا تھوڑی کسی کے لیے, مطلب یہ ہمیشہ بولتے رہو اس کو, آلویز ریمبر کرشنا نیور فورگیٹ, اس کو صرف بولتے رہو نیور فورگیٹ, اس کو بولنا مت, بولتے رہنا آلویز ریمبر کرشنا بولتے رہو اس کو. ایسا نہیں ہے نا, یہ ہمارے لیے بولا گیا کیا آپ کا ہمیشہ کرشن کا اسمرن کرنا ہے اور اس کو بھولنا نہیں ہے, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا لاگو. نہیں کریں گے تو ہم بسے رہیں گے. تو اس لیے جو ہے اس سنسار سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے اپنے ہم جیون پہ لاگو کریں, تب اس بھوتک بندھن سے ہم لوگ اس بھوتک پاش کو ہم کاٹ سکیں گے. ہرے کرشن. اور بولنا سوانو سے ٹھیک ہے, پرشن ہے. اچھا کسی کا پرشن ہو تو پرسنلی پوچھ سکتے ہیں, یہ اچھا بھی ہے. اور مان لیجیے ہم اتر نہیں دے پائے تو پرسنل میں تو پرسنل میں کوئی کچھ نہیں بولے گا, کہیں گے چلو بعد میں بتائیں, لیکن سامنے تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے. اندراشن اگتم کی